नमस्कार प्यारे श्रोताओ, पहचाना आपने, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर सविता सयाल और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जो स्वतंत्र भारत के हर नागरिक को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में प्रभावित करता है। मुझे मालूम है आपको एंग्जाइटी हो रही है, मुझे मालूम है बहुत जिज्ञासा है आपको जानने की कि ऐसा कौन सा विषय है जो हर भारतीय को किसी न किसी रूप में छूता है। और मित्रों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि यह एक ऐसा विषय है जिस पे अभी कुछ दिन पहले ही अखबारों ने प्रकाश डाला। और मित्रों, इस विषय पे डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ तो और आपके कम्युनिटी मेंबर्स हैं। एक हैं डॉक्टर जय भगवान गुप्ता जी, स्वागत है गुप्ता जी आपका, बहुत बहुत
धन्यवाद सविता जी।
और मित्रों, आपको मालूम है जय भगवान गुप्ता जी स्वर्ण जयंती प्रतिबिंब समाचार पत्र निकालते हैं, कार्यक्रम की बहुत से डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। शुक्रिया जय भगवान जी कार्यक्रम में आने के लिए।
जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए।
और मित्रों, आज एक और एमिनेंट गेस्ट है हमारे साथ, श्री नरेंद्र गौड़ जी। श्री नरेंद्र गौड़ जी गुड़गांव से आए हैं और ये वहाँ पर शब्द शक्ति संस्था चलाते हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में आप।
बहुत बहुत शुक्रिया सविता जी आपका भी मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए।
तो श्रोताओ, आज हमारी चर्चा का विषय है मित्रों, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी स्वतंत्र भारत का एक नागरिक बिना डरे बेझिझक पब्लिकली अपनी बात कह सकता है या नहीं। बिल्कुल, हमारा संविधान हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। मित्रों, अभी पिछले दिनों ही एक कार्टूनिस्ट जिनका नाम था असीम त्रिवेदी जी, उन पर उनकी वेबसाइट को बैन किया गया और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया गया। और दूसरी ओर एक और अभी घटना घटी कि दो लड़कियों ने, जो एक सोशल वेबसाइट है उस पे उन्होंने अपना कमेंट दिया
मुंबई बंद होने पर।
हाँ जी, मुंबई बंद होने पर, कि एक बहुत बड़े नेता की मृत्यु हुई और मुंबई बंद हुआ, तो उन्होंने उसमें एक अपना जो भी
उनके विचार थे
उन्होंने अभिव्यक्त किए। लेकिन उन पर भी पुलिस एक्शन लिया गया और उनकी जो मित्र जिसने जिसे ये विचार अच्छे लगे, उसने सिर्फ उस पर ये लिखा कि उन्हें अच्छा लगा उनका विचार, इसके लिए भी उन पर एक्शन लिया। तो आज एक प्रश्न उठता है हमारे मन में कि क्या संविधान ने जो हमें स्वतंत्रता दी थी, क्या वो अब मात्र शब्द बन के रह गए हैं या अभी भी उन शब्दों का अर्थ है, वो शब्द आज के संदर्भ में भी सार्थक हैं। तो आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि अब जो समय समय पर अंकुश लगाए जाते हैं वो कहाँ तक उचित है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ नरेंद्र गौड़ जी से। नरेंद्र जी, आप शब्द शक्ति संस्था चलाते हैं और उसमें आप बहुत सी काव्य गोष्ठियाँ और विचार गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं। क्या आपको लगता है कि आज भी कवि और लेखक उतने स्वतंत्र हैं कि वो अपनी बात बेझिझक कह सकें, समाज की किसी कुरीति के प्रति अगर उन्हें कुछ कहना है कह सकें, या अर्थव्यवस्था पे कटाक्ष करने की भी उनको स्वतंत्रता है? क्या
मैं ये समझता हूँ कि आज का लेखक और कवि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो अपनी बात मन से कह सकता है
जी।
लेकिन किंतु वहाँ उसकी आजादी समाप्त हो जाती है जब वो अपने देश के प्रति, देश का मजाक उड़ाई या किसी समाज का, किसी जाति विशेष का मजाक उड़ाई, वहाँ उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। देखिए, ये दोनों बातें मैं कर रहा हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है और नहीं भी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी पूरी है हमारे संविधान में
जी।
लेकिन वहाँ किंतु भी है, हमारा कोई भी किसी भी देश के नागरिक को ये आज़ादी नहीं दी जाएगी कि वो हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का मजाक उड़ाए। नेताओं पर कटाक्ष किया जा सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है या किसी को भी नहीं है, या किसी विशेष धर्म का अगर अपमान करने की किसी भी भारतीय नागरिक को आज़ादी नहीं है। अभिव्यक्ति आज़ादी है पूर्ण रूप से, वो अपनी बात कह सकता है। लेकिन भी इस बीच में मैं ये चाहता हूँ किंतु भी है, एक जो किंतु है उसका बड़ा महत्व है।
बहुत सुंदर बात कही नरेंद्र जी ने कि यदि आपको आज़ादी मिली है तो आप उस आज़ादी का दुरुपयोग ना करें। देखिए, अगर आपको आज़ादी है कि आप सड़क पर चल सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि यू विल स्टैंड इन द मिड ऑफ द रोड।
जी जी,
क्योंकि जहाँ तक आपके राइट्स हैं वहीं तक हैं जहां तक आप दूसरों के राइट्स को डिस्टर्ब नहीं करते। तो चलते हैं जय भगवान जी के पास। जय भगवान जी, आप मुझे बताएं कि बहुत बार बहुत सी पुस्तकों पर आपत्ति लगाई गई है, उनको बैन किया गया है, बहुत से लेखकों को लिखने से बैन किया गया है, तो आप बताएं क्या इसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानते हैं?
सविता जी, जैसे आप अभी कह रही थी कि आप जब सड़क पर चलते हैं तो आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आपको किसी को धक्का मारने की या चोट पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है।
बिल्कुल ठीक।
ठीक इसी तरह से जब हमारे कुछ साहित्यकारों ने ऐसी रचनाएं की जिनको पढ़कर सरकार को ये लगा कि ये कहीं जो है किसी को भावावेश में ला सकती हैं, किसी के प्रति इसमें अपमान झलक सकता है, तो उन किताबों को रोका गया।
बिल्कुल, संवेदनशील विषय थे इसलिए सरकार को लगा कि इससे व्यवस्था में किसी प्रकार की अव्यवस्था आ सकती है या किसी धर्म विशेष के लोग भड़क सकते हैं, इसलिए उन्होंने उन किताबों पर आपत्ति की अंकुश लगाया। आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान में हमें बहुत सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इन सब के विषय में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगी कि संविधान की धारा 19 हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है, यानी आप अपनी बात अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। श्रोताओं, मैं आपके लिए कोट करना चाहूंगी धारा 19 हमारे संविधान की। उसमें लिखा है, एवरीवन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। द राइट इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड ओपिनियन विदाउट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज थ्रू एनी मीडिया एंड रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स। अर्थात आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो दूसरों के विचारों को भी आप अपने विचारों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी कहा गया है कि ये संवेदनशील विषयों पे आपको स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा किसी की भावनाओं को ठेस तो नहीं लगा रहे, चाहे वो धार्मिक भावनाएं हों या उनकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत भावनाएं हों। तो जय भगवान जी, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगी कि और क्या क्या स्वतंत्रता है हमें स्वतंत्र भारत के नागरिक होने की?
सभी प्रकार की स्वतंत्रता है सविता जी। जैसे आजादी से पहले हम किसी रेल में नहीं बैठ सकते थे
जी,
किसी सभा में नहीं जा सकते थे
जी,
उस तरह की बहुत सी प्रतिबंध सब हट गए हैं
जी।
हम कोई पिक्चर बना रहे हैं, हम कोई चित्र बना रहे हैं, हम कोई लेख लिख रहे हैं, यानी प्रकाशन की प्रदर्शन की सब तरह की स्वतंत्रता है
जी। और हम अपना धर्म चुन सकते हैं, हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, और हम जब चाहे सभा कर सकते हैं शांतिपूर्वक
जी।
तो ये सब स्वतंत्रताएं हैं। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगी कि अगर स्वतंत्रता मिली है तो उसके साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। तो चलिए जानते हैं अपने एमिनेंट गेस्ट से इस विषय में और
जी।
नरेंद्र जी, आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि बहुत सी फिल्में, बहुत से संवाद, बहुत से गाने
जी,
जो कि सेंसर बोर्ड ने उन पे अंकुश लगाया, उन पे बैन किया उनको, तो क्या आपको लगता है कि ये उचित था सेंसर बोर्ड का ये सब करना?
जी, मैं मानता हूँ कि एकदम उचित था ये कदम जो है, क्योंकि फिल्में एक ऐसा हमारे समाज में माध्यम है जो बहुत प्रभाव डालती है
जी,
पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जो आज हमारा समाज नई जनरेशन खासकर प्रभावित होती है, जो फैशन जिसको कह लीजिए या बोलचाल का तरीका देख लीजिए, बहुत असर दिखाती हैं फिल्में, सबसे ज़्यादा असर दिखाती हैं मैं ये समझता हूँ। और एक समय ऐसा आया था कि बहुत ज़्यादा हमारी फिल्मों में द्विअर्थी संवाद और ये बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया था, और ऐसे ऐसे गाने हमारे फिल्मों में आए थे जो कि बैन कर दिए गए, और मैं समझता हूँ ये बहुत उचित कदम था।
ठीक कहा आपने नरेंद्र जी कि फिल्मों का हमारी आने वाली पीढ़ी पर और जो भी हमारा समाज है उस पर बहुत असर पड़ता है, तो इसलिए फिल्म बनाने वालों की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो फिल्म बनाए तो उस समय हमारी भारतीय संस्कृति या हमारे सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखें। जय भगवान जी, आपका क्या कहना है इस विषय में?
मैं नरेंद्र जी से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ी सी
जी
स्वतंत्रता के साथ।
हाँ जी,
कई बार फिल्म वाला अपना जो नजरिया पेश करता है वो सेंसर बोर्ड नहीं समझ पाता
जी,
या कई बार जो सेंसर बोर्ड समझता है वो लेखक नहीं समझ पाता। इसको यूं भी
कहते हैं,
जैसे शर्मिला टैगोर जी आपके गुड़गांव के नजदीक से चेयरमैन रही
जी, जी।
उन्होंने 2-3 बार बैन लगाए और विजयानंद से उनकी भिड़ंत हो गई।
हाँ जी, वो सेंसर बोर्ड में थे,
इतने बड़े निर्देशक रहे हैं
जी,
फिल्मों के
जी,
अभिनेता भी रहे और वो मेंबर थे, वो एग्री नहीं थे, लेकिन शर्मिला टैगोर ने कहा नहीं इस पर बैन लगेगा।
बिल्कुल, ये कहानी तो ये
विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो कई बार रहस्यात्मक भी हो जाती है
आजकल फिल्मों में इतनी गालियों का प्रयोग हो रहा है, देखिए आप, तो खास करके बैन कर दी जानी चाहिए।
ये दादा वाली फिल्मों में जो दादा टाइप
नहीं, आजकल की जो नई फिल्में आ रही हैं
बिल्कुल ये बैन होनी चाहिए,
और गैंग ऑफ वासेपुर,
इसमें कोई
गंगा जल, ऐसी गालियां जो आप समाज में देख नहीं पाए, क्या कहना चाहते हैं? वो डायरेक्टर के पास एक रहता कि ये डिमांड है जी, सीन की डिमांड है या फिल्म की डिमांड है, कहानी की डिमांड है।
अक्षय कुमार जैन नवभारत टाइम्स के एडिटर थे जब, वो ये कहा करते थे कि जो चीज हम आप चार आदमियों में बैठकर नहीं कह सकते वो सिनेमा पर सुन भी नहीं सकते।
बिल्कुल ठीक।
तो इसलिए ये एक मोटा सा मापदंड है।
और बैन का जहाँ जिक्र किया गुप्ता जी, एक आजादी से पहले एक फिल्म आई थी रोटी, अंग्रेजों ने उसे बैन कर दिया। जो भी भारतीय वो फिल्म देख के बाहर निकलता था अंग्रेजों के प्रति इतना गुस्सा होता था, 5 देश अंग्रेजों को मार देता था।
जी,
तो अंग्रेजों ने बैन की। देखिए वो हमारे लिए तो
जबकि फिल्म का ये पर्पज नहीं था,
पर्पज नहीं, नहीं पर्पज तो यही था कि आजादी चाहिए हमें,
नहीं वो
अंग्रेजों को भगाना,
मारना तो पर्पज,
दूर हटो है दुनिया वालों, दुनिया वालों को एडिट किया गया, वहां था दूर हटो है अंग्रेजों, सीधे सीधे लिखा था कवि ने, देखिए दूर हटो अंग्रेजों, ये हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, दुनिया वालों करवाया।
बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत
है। यही बात मैं जब कह रहा था कि बैन हुई तो कवि प्रदीप की रचना थी
जी,
और उन्होंने फिर चंद्रमुखी के नाम से लिखा
जी, जी।
प्रदीप के नाम से लिखना बंद कर दिया गया था, उन्हें ये लिखने की वो बंदिश लगा दी थी उनके ऊपर कि आप कोई रचना नहीं देंगे।
बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समाज में अव्यवस्था ना फैले, लोग उग्र ना हो, कि समाज में व्यवस्था बनी रहे, किसी धर्म के लोग भड़क ना जाएं, इसलिए कभी कभी अंकुश लगाना उचित है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें, जैसे अभी फेसबुक पे बच्चों ने कुछ अपने एक्सप्रेशन दिए, तो ये देखना चाहिए कि कितना सेंसिटिव मैटर है। हर मैटर पे डिपेंड करता है, और मैं ये कहूँगी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जो बात लिख रहा है उसको भी देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए
जी, जी।
और बाकी लोग जो उसको रिसीव कर रहे हैं, जो उस चीज को सुन रहे हैं, उनको भी अगर वो कुछ उसमें ऑब्जेक्शनेबल लगता है तो उन्हें भी उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए, एक स्वस्थ समाज के लिए उसकी जिम्मेदारी हम सब की है। वही बात है कि आप स्वतंत्रता है तो आप अगर लाठी घुमा रहे हैं और अगर दूसरे की नाक बीच में आ रही है, ऐसा हमारे यहाँ बचपन में हमें बताया जाता था, तो इसका आप दूसरे के राइट को तो नहीं लग सकते, दूसरों को हर्ट करके तो आप स्वतंत्रता नहीं ले सकते। स्वतंत्रता का अर्थ आपको समझना पड़ेगा। जय भगवान जी, कुछ कहना चाहते
हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, हमें ये समझाया गया था कि जैसे आप अपनी छतरी खोलने की स्वतंत्रता है
जी,
लेकिन जब आप छतरी खोल रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी की आँख में नाक में ना लगे जाकर। ये आपको स्वतंत्रता नहीं है कि उस प्रोसेस में आप दूसरे की आंख फोड़ दें।
बिल्कुल, दुरुपयोग ना करें।
और विशेष रूप से ये विषय आज प्रासंगिक क्यों हुआ है, क्योंकि असीम त्रिवेदी ने वो कार्टून बनाया, अभी राम के ऊपर चर्चा छिड़ गई है
जी।
अभी हमारे एक बड़े वरिष्ठ वकील ने ये कह दिया कि मैं राम को नहीं मानता, वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, जबकि राम एक समुदाय की, बहुत बड़े समुदाय की आस्था का केंद्र है, वो उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते
जी।
तो ये जब भी हम कोई बात करते हैं, एक चूंकि विशेषतः भारत में ये समस्या है, यहाँ पर इतने बहुधर्मी लोग हैं, बहुभाषी लोग हैं, अब भाषा में भी कई शब्दों का अर्थ यहाँ पर कुछ है
और दूसरी भाषा में
मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग चर्चित होने के लिए ऐसे कदम उठाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि
रातों रात अपना
नाम कमाने के लिए कुछ उल्टा सी, देखो अच्छा काम करके तो नाम कमाया नहीं, वो कमाने के लिए आपको एक बहुत समय लगेगा, आप कुछ ऐसा लिख दीजिए या ऐसा बोल दीजिए जिससे आप रातों रात जो है ना चर्चा में आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है।
जिससे नेगेटिव पब्लिसिटी,
कुछ नेता कुछ लेखक ऐसे हथकंडे अपनाते हैं,
मीडिया भी,
जैसे तस्लीमा नसरीन का एक लज्जा उपन्यास से ही उन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाली, जबकि वो उपन्यास मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं था।
तो मित्रों, आज की परिचर्चा हमारी अधूरी रहेगी यदि मीडिया के बारे में, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के बारे में बात ना की जाए। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, और अभिव्यक्ति की बहुत सी विधाएं हैं। कवि कविता लिखकर अपने अभिव्यक्ति करता है, कोई कार्टूनिस्ट है या कोई पेंटर है, वो अपने चित्रों के द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं। इसी तरह हमारे जो समाचार पत्र हैं और हमारे जो पत्र पत्रिकाएं हैं, वो भी बहुत तरह के समाचार देकर और उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं
जी।
ऐसा कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी में। किसी भी गणतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो समाचार पत्रों को स्वतंत्रता दे कि वो लिख सकें। इसीलिए तो इनको
चौथा स्तंभ
माना जाता है और वॉच डॉग भी कहा जाता है। तो जय भगवान जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे पास प्रेस को स्वतंत्रता है जितनी होनी चाहिए?
जी जी, इस समय दो मीडिया हैं हमारे यहाँ, एक जिसको हम टेलीविजन या प्रदर्शन का बोलते हैं, मीडिया वीडियो है, और एक लेखन प्रकाशन जो समाचार पत्र आते हैं, पुस्तकें,
ऑडियो विजुअल जिसमें रेडियो और टेलीविजन आते हैं और समाचार पत्र।
जी, अब कुछ ऐसा चलन भी हो गया है कि वही जैसे अभी गौड़ साहब कह रहे थे कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए मीडिया भी ऐसे हथकंडे अपनाता है जिससे वो नेगेटिव चीजों को ऊपर ला करके
फ्रंट पेज में ऐसी खबर होती है दिल दहला देने वाली, और अखबार का
सनसनी फैलाना,
सनसनी फैलाने का रहता है, और अच्छी खबर पता चला चौथे पांचवें पेज पर छोटी सी है।
तो
हत्या की, चोरी की, बलात्कार की, घोटालों की खबरें फ्रंट पेज पे होती है गुप्ता,
और खासकर जो सांदे टाइम्स निकलते हैं
जी,
सांदे के अखबारों का तो फंक्शन ही ये लगता है कि सिर्फ सनसनी वाली खबरें देना, क्योंकि वो समझते हैं जितनी हम इसको ज्यादा वो महत्ता देंगे उतना हमारा अखबार बढ़ेगा, बिकेगा।
लेकिन मुझे लगता है गुप्ता जी, समाचार पत्रों पर भी कई बार जो वो समाचार पत्र चला रही है कंपनी, उनका दबाव रहता है, या जो लोकल वहाँ के लोग हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं उनका दबदबा रहता है, तो कुछ समाचार पत्र तो इस दबाव में आ जाते हैं और कुछ बहुत ही निर्भीक लिखते हैं। तो ये मैं फिर कहूंगी कि ये जिम्मेदारी भी समाचार पत्र छापने वाले पर है कि जनता उन पर विश्वास कर रही है तो वो ऐसी खबरें ही छापें जो सच्चाई हो वो जनता के सामने लाने का प्रयत्न करें, किसी तरह के दबाव में ना आए।
सविता जी, कई बार ये होता है कि वो दुविधा में फंसे होते हैं
जी,
कि उनका प्रकाशन का धर्म ये कहता है कि वो सच उन्हें छापना चाहिए
जी,
लेकिन उसका परिणाम, जो संभावित परिणाम है, वो ये दर्शाता है कि इससे गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सारी जनता उसी नजरिए से समझे आपकी खबर को जिससे आप लिख रहे हैं, जरूरी नहीं,
बिल्कुल ठीक,
भावावेश में कोई व्यक्ति आ सकता है, और अगर परिणाम जाने बिना ही उसने वार कर दिया या मारपीट शुरू हो गई,
भड़क गया,
तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल है,
व्यवस्था खराब,
जैसे बॉम्बे में अभी हुआ एक बड़े नेता की, उस पर वो जो दो लड़कियों ने अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने सिंपली ये सोचा भाई किसी के मरने पर क्यों बंद हो, एक बात
उनका
है,
विचार था ये।
उनका अपना विचार था, और उन्होंने बड़ी सरलता उसमें बिना किसी छल छंद के या कपट के वो एक विचार अपने व्यक्त कर दिए, गलती या उसका परिणाम ये हुआ कि जो उसको पढ़ता गया वो साथ साथ अपने कमेंट जोड़ता गया और वो बात फैल गई। बात फैलने में वही हुआ जो दूसरों को बुरा लगा, जो उन नेताओं के अनुयायी थे या फॉलोअर थे या जो उनको सम्मान देना चाहते थे, भाई इसमें क्या बुराई है, एक बड़ा व्यक्ति जब गुजरता है, मरता है, तो नेता थे।
नरेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में कि क्या हमारे समाचार पत्रों को स्वतंत्रता है और क्या वो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग?
स्वतंत्रता, देखिए आज के समय में मैं ये समझता हूँ कि कितने समाचार पत्र निकलते हैं और कितना कंपटीशन है सब में बिकने का, वो बिकने के लिए क्या क्या करते हैं। देखिए कभी कभी तो मुझे अचरज होता है कि फ्रंट पेज पे ऐसा विज्ञापन होता है जो कि नहीं होना चाहिए, और कई बार तो ऐसे लेख होते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमारे हिंदी के समाचार पत्रों की मैं बात कर रहा हूँ कि वो हमारे समाज के हैं, मुझे तो लगता है कहीं से प्रायोजित हैं, बाहर से प्रायोजित हैं, मुझे ऐसा लगता है। कई लेख तो देख के मुझे जो ना घिन आती है कि ऐसे लेख क्या हमारे घर में पढ़े जाने चाहिए, मैंने देखे हैं ऐसे लेख, और अखबारों में भी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े विज्ञापन ऐसे होते हैं फोटो सहित कि जो नहीं होने चाहिए, मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा कि किस चीज़ के विज्ञापन होते हैं।
नरेंद्र जी, उनको वहाँ से वो पैसा मिलता है, अगर आप समाचार पत्र की तरफ से देखें तो उनको परेशानी हो जाएगी। अगर
सविता जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, आज समाज बिक रहा है, ये जो चीजें हैं, जो हमारा चौथा स्तंभ है हमारे संविधान का प्रेस, वो बिकने के लिए तैयार है, पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, मैं ये कह रहा हूँ। मेरा जो कहने का ये है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है लेकिन वो उससे भी कहीं आगे जा रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि भी फ्रंट पेज में ये विज्ञापन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या ये घर में ये पढ़ने लायक है या नहीं है ये लेख,
तो जिम्मेदारी
की वो खुद नहीं।
मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, उसमें इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि पढ़ा जाने लायक है या नहीं है, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े अखबार फ्रंट पेज पर जूते कंपनी के पूरा का पूरा पेज, यानी अखबार का नाम भी दब गया, ऊपर एड ही एड है। अब आप जो कह रही हैं दायित्व है, भाई उनका कमाना पैसा दायित्व नहीं है, उनका समाचार देना तो दायित्व है। जब समाचार को छोड़कर पैसा कमाना उद्देश्य हो जाता है तब वो गलत हो जाते हैं।
बिल्कुल, देखिए
पैसा कमाना भी है और अपने उसको बिजनेस को बिजनेस है हो गया ना व्यापार है।
देखिए इस परिचर्चा से यही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि यदि संविधान ने स्वतंत्रता दी है, आज भी हमारे पास वो स्वतंत्रता है, लेकिन उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग ना करें, हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें। आखिर स्वस्थ समाज का दायित्व हम सब पर है, किसी एक व्यक्ति विशेष पर नहीं।
हमारा शास्त्र भी ये कहता है सत्यम प्रियम बुरियात,
बहुत सुंदर
है जी, प्रिय सत्य बोलो अप्रियम सत्यम शालीनता से सभ्यता से आप सदाचार का व्यवहार करिए।
जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको तो सोच समझ के बोलना चाहिए।
बिल्कुल, यदि आप अपने स्वस्थ विचार समाज के सामने रखते हैं तो वो समाज आपको मान सम्मान देगा, आपके विचारों का मान सम्मान होगा। यदि वो विचार किसी को भड़काते हैं या किसी को हीन भावना या कुंठा से ओतप्रोत कर देते हैं या किसी की धार्मिक जो संवेदनशीलता है उसको आहत करते हैं, तो ऐसे विचारों की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। और सरकार का ये दायित्व है कि वो समाज में व्यवस्था बनाए रखे, एक स्वस्थ राष्ट्र की
वातावरण बनाए, उसका दायित्व, उसकी पहली ड्यूटी है।
देखिए सरकार का भी ये दायित्व है कि व्यवस्था ठीक चले और एक स्वस्थ राष्ट्र हो, और स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए एक स्वस्थ समाज होना जरूरी है, और उस स्वस्थ समाज के लिए हम सबको स्वस्थ विचारों की अभिव्यक्ति बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए कह सकते हैं हम कि ए हेल्दी सोसाइटी कैन गिव बर्थ टू अ हेल्दी नेशन। तो अगर आप एक हेल्दी नेशन की कल्पना करते हैं, एक हेल्दी नेशन में रहना चाहते हैं, तो आपके विचार भी स्वस्थ होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, और आप अभिव्यक्ति करें उन विचारों की, लेकिन उस अभिव्यक्ति का दुरुपयोग ना करें। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना के आने वाले अन्य रोचक कार्यक्रम। धन्यवाद देती हूँ आप सबकी ओर से अपने अतिथियों का। जय भगवान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस परिचर्चा में भाग लिया, और नरेंद्र गौड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सविता जी, आपका
बहुत बहुत। रेडियो मानव रचना का भी
नमस्कार।